الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में यानी दीन एसेंशियल्स फॉर मेन की जो ये दो क्लासेस होती हैं पीर और बुध की शाम को, तो उनमें हम सूरतुल माईदा की तफसीर पढ़ना पिछली क्लास से शुरू कर चुके हैं। इसमें पहली आयत का ही तर्जुमा और शान नुज़ूल, खुलासा मजामीन पढ़ लिया था और खुलासा तफसीर वो भी हमने पढ़ के मुकम्मल कर ली थी। अब जो है मारुफ व मसाइल सफ़ा नंबर 11 से हम पढ़ रहे हैं आज इंशाल्लाह। तो मारुफ मसाइल चूँकि हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह साहिब मारुफुल कुरआन की अपनी काविश है, जबकि इससे पहले तर्जुमा और खुलासा तफसीर ये उनके मशाइख की काविशें थीं। तो इसमें उन्होंने फिर चंद चंद चीदा चीदा बातों को इकट्ठा किया होता है। सारी आयात हर आय यानी पूरी आयत की या सारी आयात जो मजमुए में उन्होंने रखी थी इससे पहले, तो उनकी तफसीर ज़रूरन नहीं होती है। बहरहाल ये तो एक ही आयत थी, तो इसी के मारूफ मसाइल में हजरत फरमाते हैं कि इस सूरत की पहली आयत का पहला जुमला एक ऐसा जामिअ जुमला है कि उसकी तशरीह व तफसीर में हजारों सफहात लिखे जा सकते हैं। राइट, एक जुमला है, एक अल्लाह ताला का कलाम का की आयत है और फरमा रहे हैं कि हजारों सफहात लिखे जा सकते हैं। औफू बिल उकूद, ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा जो खेल है, जिंदगी का खेल, दुनिया का खेल, कायनात का खेल जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है, ठीक है, ये सारा का सारा जो है वो अकद से शुरू हुआ, अकद से, वादे से, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं, कुरान मजीद से जानते हैं, हदीस मुबारक से जानते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानियत को बनाया तो आलमुल अरवाह में उनसे एक वादा लिया, ठीक है, अपना चेहरा करवाया यानी अपना अपना वजह जो है वो दिखलाया सबको और पूछा अलई अलस्तो बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, ठीक है। सब ने जवाब दिया कालू बला या रब, बेशक आप ही हमारे रब हैं। तो ये रब होने का सब ने इकरार कर दिया कर लिया, और इससे क्या मफहूम निकलता है कि सबने अल्लाह ताला से वादा कर लिया कि हम आप ही को रब मानेंगे, आप ही को रब जानेंगे और उसके अलावा किसी को अपना रब जो है वो नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये एक वादा है। अब जो कुछ आगे हो रहा है, ठीक है, जो कुछ आगे हो रहा है, नमाज पढ़ना, रसूलों पर ईमान लाना और जो है वो जुल्म ना करना और कत्लो गारत गरी ना करना, फसाद ना करना, झूठ ना बोलना, राइट, ये सारी की सारी चीजें, ये सब के सब उसकी ब्रांचेस हैं, ये सब के सब उसकी फुरुआत हैं इस एक वादे की। तो अब गोया कि इसकी तफसीर में तो फिर सब कुछ ही आ गया ना। तो हजरत मूसा शफी ने थोड़ा लिखते हैं कि इसकी तशरीह व तफसीर में हजारों सफात लिखे जा सकते हैं, ठीक है। वो वही लिख सकता है जिसकी नजर इन सारे के सारे मामलात के ऊपर बड़ी यानी गहरी नजर हो, वो फिर हजारों नहीं, वो तो फिर लाखों भी लिख सकता है, ठीक है, उसकी तो फिर कोई लिमिट नहीं है ना कि क्या क्या अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी, नेमतों का शुक्र अदा करना ये भी इसी के अंदर शामिल है, कुफराने नेमत ना करना ये भी इसी के अंदर शामिल है, सब कुछ। तो फरमाते हैं कि हजारों सफात लिखे जा सकते हैं और लिखे गए हैं, ठीक है, यानी जो कुछ उलमा मशायख ने लिखा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसको कलम बंद किया, उसकी तशरीहात की गई, तो ये सब इसी का तो है, ये औफो बिल अकूदी तो है सारा का सारा, है वादों की पासदारी करो, पाबंदी करो। इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जिन्होंने मानने का इकरार किया, जुबान से इकरार किया और दिल से जो है वो उसकी तस्दीक करी कि रसूल अल्लाह ताला के भेजे हुए हैं। ये जो अफराद हैं मोहम्मद रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईसा अलैहि सलाम, मूसा अलैहि सलाम, दाऊद अलैहि सलाम, इब्राहिम अलैहि सलाम, ये जितने भी लोग थे ये अल्लाह के भेजे हुए रसूल पैगंबर थे कि जो कि अल्लाह की तरफ से हिदायत लेकर के आए थे। ये होता है ईमान वाला, ठीक है, कि इन अफराद को अल्लाह का रसूल तस्लीम करता है, जुबान से भी इकरार करता है, दिल से भी तस्दीक करता है, इसको ईमान वाला कहते हैं। तो ऐ वो लोगों जो के इकरार कर चुके हो, तस्दीक कर चुके हो, औफो बिल उकूद, वादों की पासदारी करो, वादों को पूरा करो, वादों को निभाओ, ठीक है। तो अब ये जो सूरत है ना, ये भी फिर एक तरह से अगर देखा जाए तो ये सूरत जो है ये ईमान वालों को मुखातब करती है, ठीक है। ये यानी जिस तरह से हमने सूरह यूसुफ पिछले साल पढ़ी थी, तो सूरह यूसुफ के अंदर भी क्या खास बात थी कि वो ईमान वालों के आपस के मामलात के बारे में थी, है ना। एक वाकया लेकर के, यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला वाकया लेकर के, तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम वाले वाकये के अंदर जितने प्लेयर्स थे, तकरीबन सारे के सारे प्लेयर्स जो थे वो मोमिनीन थे, ईमान वाले थे, मुसलमान थे, और उनके आपस के सारे मामलात के ऊपर वो पूरी की पूरी सूरत है, ठीक है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हैं, अल्लाह करे हम वाकई ईमान की सलामती के साथ यहाँ पे मौजूद हों, हमने कोई ऐसी हरकत ना करी हुई हो कि जिसकी वजह से हम भी खारिज ईमान हो गए हों, अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा मामला हो, वरना तौबा ए कलमात ईमान की तजदीद के साथ पढ़ते रहना चाहिए, अगर कभी गलती हो गई तो वापस दाखिल हो जाए ना कम अज कम, ठीक है। तो हम सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले ही हैं, तो अल्लाह ताला इस सूरत के अंदर हमें मुखातब फरमा रहे हैं, मुशरिकीन को मुखातब नहीं कर रहे, मुनाफिकीन को मुखातब नहीं कर रहे, और दूसरे बाकी इंसानियत को मुखातब नहीं कर रहे, बल्कि खास हम और आपको मुखातब कर रहे हैं, ठीक है। यानी ए ईमान वालों, अपने मुआहिदों को पूरा किया करो। इसमें पहले या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब फरमाकर मजमून की अहमियत की तरफ मुतवज्जह कर दिया कि इसमें जो हुक्म है वो ऐन ईमान का तकाजा है, ठीक है। यानी जब तुम ईमान ले आते हो ना, तो अब इसका मुक्तवा क्या होता है, यानी अब व्हाट बिकम्स ऑब्लिगेटरी अपॉन यू, व्हाट यू बिकम ऑब्लाइज्ड फॉर, ठीक है, अब तुम्हारे ऊपर क्या तकाजे बनते हैं, ठीक है। तो ये ऐन ईमान का तकाजा, यानी ईमान वालों से मुखातब किया जा रहा है कि अब जो है ना वो तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये नहीं करना है, ठीक है। तो इसी को कहा कि वो ऐन ईमान का तकाजा है। इसके बाद हुक्म फरमाया औफो बिल उकूद, यानी उकूद व अक्द, अक्द की जमा है, प्लूरल, अक्द का प्लूरल है या उकूद, जिसके लफ्जी मानी बांधने के हैं, ठीक है। जैसे तर्जुमे में बात हुई थी कि गिरह जो होती है ना, जो दो रस्सियों को जोड़ती है आपस में, तो उसको भी उकदा कहते हैं, उकदा गिरह, तो इसके लफ्जी मानी बांधने के। और जो मुआहिदा दो शख्सों या दो जमातों में बंध जाए उसको भी अक्द कहा जाता है, इसलिए बमानी उहूद हो गया, ठीक है, अहद, अहद की जमा उहूद, ठीक है। तो दो इंसानों के दरमियान अब ये जो है वो निकाह का भी मुआहिदा है, कबिल तू, इधर से वो भी कबिल तू कहते हैं, इधर से ये भी कबिल तू कहते हैं, अनलेस के वो काफ को जो है वो खा पढ़ने वाले हो तो फिर कबिल तू कह देते हैं, लेकिन कबिल तू कह देना चाहिए तब निकाह हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वो भी जो है वो अकद है। और उसी तरह से जब बाइंग एंड सेलिंग होती है, ट्रेड होती है, तो उसके अंदर भी बेअतु व इश्तराई तू, मैंने बेच दिया और वो कहता है मैंने खरीद लिया, बेअतु व इश्तराई तू, ये भी जो है वो अहद हो जाता है, ठीक है। तो आपके ऊपर जो है वो शराइत बाइंडिंग हो जाती है। तो अब वो जो निकाह के अंदर शराइत बाइंडिंग हो गई, या किसी तजारती माहदे के अंदर शराइत बाइंडिंग हो गई, या किसी भी, तो वो सारा का सारा क्या होगा, औफू बिल उकूद, अब इनको पूरा भी करना है, ठीक है। इमाम तफसीर इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने मुफस्सरीन सहाबा व ताबईन का इस पर इजमा नकल किया है। इमाम जस्सास ने फरमाया यानी इस पर इजमा नकल किया है कि सारे जो है ना वो मुत्तफिक हैं, उलमा, मुफस्सरीन, सहाबा, ताबईन, ठीक है, कि यानी जो आगे इबारत आ रही है उसके बारे में, या पीछे जो हो गई कि इसके ऊपर इजमा है कि भाई ये दो शख्सों के दरमियान जो मुआहदा होता है ना, इसी को जो है वो अकद कहते हैं, और यहाँ पे वही मुराद है, कोई और चीज मुराद नहीं है यहाँ पर। इमाम जस्सास ने फरमाया कि अक़द कहा जाए या अहद व मुआहदा, इसका इतलाक ऐसे मामले पर होता है जिसमें दो फरीक ने आइंदा जमाने में कोई काम करने या छोड़ने की पाबंदी एक दूसरे पर डाली। दो फरीक हो, चाहे वो फरीक जो भी हो, दो इंसान हो, दो जिन हो, एक इंसान एक जिन हो, एक जिन एक इंसान हो, या जो है वो परवरदिगार और इंसान हो, ठीक है, ये दो फरीक हैं जो भी हो, दोनों दोनों तरफ जिस जिनसे भी ताल्लुक रखते हो, जिस किस्म के भी वो हो, तो दोनों फरीकों के दरमियान कोई वादा हो गया कि ये करूंगा या ये नहीं करूंगा, तो इसको कहते हैं, इसी के ऊपर, इसके ऊपर इसका इतलाफ होता है, इसी पर, और दोनों मुत्तफिक होकर उसके पाबंद हो गए हों, दोनों ने इतफाक कर लिया हो। वादा वही होता है जिसमें दोनों का इतफाक हो, एक का इतफाक है, दूसरा का इनकार है, तो उसको वादा नहीं कहते, ठीक है। हमारे उर्फ में इसी का नाम मुआहिदा है, हमारे कॉमन अंडरस्टैंडिंग में, जो हमारी लैंग्वेज है, मुहावरा है हमारा, उसके अंदर इसी को मुआहिदा कहते हैं। इसीलिए खुलासा मजमून इस जुमले का ये हो गया कि बाहिमी मुआहिदात का पूरा करना लाजिम व जरूरी समझो, ठीक है, लाजिम समझो। लाजिम किस चीज को समझना होता है कि जिसको करना भी होता है, और बस इतना के करना होता है, ठीक है, तो समझ लो कि हाँ करना है, लेकिन नहीं किया तो फिर क्या होगा, फिर उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी, सजा, पनिशमेंट, गुना, ठीक है। तो लाजम की जो जो लफ्ज है ना, इसकी तारीफ ये होती है कि करोगे तो अच्छी बात है, हो सकता है कुछ तुम्हें रिवॉर्ड शिवॉर्ड भी मिल जाए, नहीं करोगे ना तो छोड़े नहीं जाओगे, बख्शे नहीं जाओगे, इग्नोर नहीं कर दिए जाओगे, ये नहीं होगा तुम्हारे साथ, ठीक है ना, कि अगर तुम इसको फुलफिल नहीं करोगे तो कुछ नहीं होता, जैसे कि आज हमने समझ लिया है कुछ नहीं होता, ये नहीं, ठीक है, तो लाजिम के लफ्ज का ये मतलब, ठीक है। अब ये देखना है कि इन मुआहिदात से कौन से मुआहिदात मुराद, इसमें हजरात मुफस्सरीन के अकवाल बजाहिर मुख्तलिफ नजर आते हैं कि किसी ने कोई मुआहिदा मुराद दिया, किसी ने कोई मुआहिदा मुराद दिया, तो बजाहिर इख्तलाफ नजर आता है। किसी ने कहा है कि इससे मुराद वो मुआहिदात हैं जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों से ईमान और अताअत के मुतालिक लिए हैं, ठीक है, जैसे अलस्तु बिरब्बिकुम पहला था, और उसके बाद दुनिया के अंदर जब मुसलमान होते हैं तो फिर रसूल जो है वो मुआहिदे लेते हैं अल्लाह के बिहाफ के ऊपर, तो बाज ने कहा कि वो मुराद है, या वो मुआहिदात जो अल्लाह ताला ने अपने नाजिल किए हुए अहकाम हलाल और हराम से मुतअल्लिक अपने बंदों से लिए हैं, ठीक है, यानी एक तो ईमानी मुआहिदात हो गए कि तुम अल्लाह को ही इबादत के काबिल समझोगे, किसी और को इबादत के काबिल नहीं समझोगे, फरिश्तों को जो है वो अल्लाह ताला के काम करने वाला समझोगे, सारे काम अल्लाह ताला के फरिश्ते जो है वो करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, उसके खिलाफ कुछ नहीं करते, ठीक है, और तुम आखिरत को समझोगे कि आखिरत में ऐसा ऐसा होगा और ऐसे ऐसे हिसाब किताब होगा और ये होगा वो होगा, ठीक है, तो ये सब ईमान से मुतालिक मुआहदे हो गए, ऐसे ही समझोगे जैसा कि नबी ने बताया है, या फिर ये कि अल्लाह ताला ने जो हलाल और हराम के अहकाम दिए हैं कि शराब हराम है उसको हराम ही समझोगे, उसको हलाल समझना नहीं शुरू हो जाओगे, मौसीकी हराम है उसको हराम ही समझोगे, उसको हलाल समझना नहीं शुरू हो जाओगे, ठीक है, पर्दा फर्ज है उसको फर्ज ही समझोगे, उसको गैर फर्ज समझना नहीं शुरू हो जाओगे, ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने अपने नाजिल किए हुए अहकाम हलाल और हराम से मुतअल्लिक अपने बंदों से लिए हैं, ठीक है, तो इनमें से किसी का भी इनकार नहीं करोगे, ये होगा मुआहदे को पूरा करना अल्लाह ताला के साथ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन से यही मनकूल है, और बाज ने फरमाया, ठीक है, यानी अब्दुल्ला बिन अब्बास की यही इसकी तफसीर है अकूत से, ठीक है, कि अल्लाह ताला के बंदों के साथ जो मुआहदे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद बाज यानी दूसरे मुफस्सरीन की बात कर रहे हैं कि बाज मुफस्सरीन ने फरमाया कि मुआहदात से इस जगह वो मुआहदात मुराद हैं जो लोग आपस में एक दूसरे से कर लिया करते हैं, ठीक है, जैसे मुआहदा निकाह, मुआहदा है बैअ व शरा, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग वगैरह, लोगों के आपस के मुआहदात मुराद हैं बाज मुफस्सरीन के नज़दीक। मुफस्सरीन में से इब्ने जैद और जैद बिन असलम इसी तरफ गए हैं, यानी इन्हीं दो बड़े मुफस्सरीन की एक्सप्लेनेशन यही है उकूद से कि लोगों के आपस के मुआहदात। और बाज ने फरमाया कि मुआहदात से वो हल्फ हलफ और मुआहदे मुराद हैं जो जमाने जाहिलियत में एक दूसरे से बाहिमी इमदाद के लिए लिया करते थे, ठीक है, कि भाई फलाना कबीला जो है वो दूसरे कबीले के साथ मुआहदा कर लेता था कि भाई अगर किसी दुश्मन ने हमारे ऊपर हमला किया तो आप जो है वो हमारी मदद को आएंगे। तो अगरचे के जमाने जाहिलियत में मुआहदे किए गए थे लेकिन उनको भी पूरा करने का हुक्म है, ठीक है, यानी इस तरह के मुआहदे। तो ये बाज़ मुफस्सरीन के नज़दीक वो वाले मुआहदे यहाँ पे मुराद हैं। मुजाहिद, रबी, कतादा वगैरह मुफस्सरीन ने भी यही फरमाया है, लेकिन सही बात यह है कि इनमें कोई तजाद या इख्तिलाफ नहीं। अब ये जो है ना वो कंक्लूजन हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने निकाल के बता रहे हैं कि बज़ाहिर ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ मुआहदे नजर आ रहे हैं लेकिन असल में इनमें कोई इख्तिलाफ और कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बल्कि ये सब किस्म के मुआहदात लफ्ज अहूद के तहत में दाखिल हैं और सभी पूरे करने के लिए कुरान करीम ने हिदायत दी है। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह और बंदों के दरमियान मुआहदा पूरा करने की हिदायत दी है लेकिन बंदों बंदों के दरमियान मुआहदा है उसको पूरा करने की कोई हिदायत नहीं दी, या बंदों बंदों के दरमियान मुआहदों को पूरा करने की हिदायत दी और अल्लाह और बंदे के दरमियान मुआहदों को पूरा करने की कोई हिदायत नहीं दी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बस वो जाहिरी इख्तिलाफ है, किसी ने इस तरह से बयान किया, किसी ने इस तरह से बयान किया, लेकिन सम टोटल इनका ये है कि सारे ही मुआहदात इसमें मुराद है, क्योंकि पूरी ओवरऑल जब तशरीह की जाएगी किसी कुरानी आयत की तो भाई पूरे दीन को देख करके तशरीह की जाती है, तो उसके मुताबिक तो यही है। इसीलिए इमाम रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुआहदात की जितनी किस्में हैं सब इस लफ्ज के हुक्म में दाखिल हैं, और फिर फरमाया कि इसकी इब्तदाई तीन किस्में हैं, यानी बुनियादी इब्तदाई जो है वो तीन किस्में हैं। एक वो मुआहदा जो इंसान का रब्बुल आलमीन के साथ है, मसलन ईमान, अताअत का अहद या हलाल और हराम की पाबंदी का अहद, ठीक है। दूसरे वो मुआहदा जो एक इंसान का खुद अपने नफ्स के साथ है, जैसे किसी चीज की नजर अपने जिम्मे मान ली कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, इसको नजर मानना कहते हैं, या हलफ करके कोई चीज अपने जिम्मे लाजिम कर ली, जैसे कि ओथ लेते हैं कि मैं जो कुछ कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, और बी गॉड माई विटनेस, इस तरह की, जो वो अंग्रेज भी इस तरह का हलफ लेते हैं, तो उसको हलफ लेना कहा ना, जैसे कि हमारे यहाँ अलहमदुल्ला कुरान मजीद के ऊपर हलफ लिया जाता है, या कोई ईसाई है तो उसे कहा जाता है कि आप बाइबल के ऊपर हलफ लें, ठीक है, या जो है वो अमेरिका में कहा जाता है या आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हलफ लें, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर दाखिल है। तीसरे वो मुआहिदा जो एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ, ठीक, यानी परवरदिगार के साथ, पहली किस्म हुई, दूसरी किस्म हुई अपने साथ कि मैं ये वादा करता हूं अपने आप से गोया कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो फिर मैं झूठा होऊंगा या मैं सजा का मुस्तहिक होऊंगा, ये अपने आप से एक तरह का वादा है, इसमें नजर भी आ गया, इसके अंदर खलफ भी आ गया। और तीसरा मुआहिदा क्या, इंसान के दूसरे इंसान के साथ। और इस तीसरी किस्म में वो मुआहदात शामिल हैं जो दो शख्सों या दो जमातों या दो हुकूमतों के दरमियान होते हैं, इंडिविजुअल्स भी और यानी ग्रुप्स भी, हत्ता के इवन गवर्नमेंट्स भी। अच्छा, अल्लाह ताला के साथ जो मुआहदा है तो इसका मामला जो है ना वो एक्सप्लिसिटली तो नहीं होता कि ए अल्लाह मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जो हूँ नबी पर ईमान लेकर के आया हूं और हमेशा इसके ऊपर साबित कदम रहूंगा और जो है वो आपके हलाल को हलाल जानूंगा और आपके हराम को हराम जानूंगा, ऐसा तो शायद ही किसी ने किया हो, ठीक है, अल्लाह ताला से वादा किया, अल्लाह ताला से तो बातचीत होती नहीं है, ना नमाज के अंदर बैठ करके इस तरह के वादे कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम कलमा पढ़ते हैं ना तो इम्प्लिसिटली हम अल्लाह से वादे ही कर रहे होते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के काबिल नहीं है। वह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे हैं और उसके रसूल हैं। अब इसके अंदर मैं वादा करता हूं का तो लफ्ज ही कोई नहीं है, इसके अंदर कबिलतु का तो लफ्ज ही कोई नहीं है, इसके अंदर बेतु व इश्तरीतु का भी लफ्ज कोई नहीं है। ठीक है, तो एक्सप्लिसिटली इन वर्ड्स इन कलिमात तो हमने कोई वादा नहीं किया अल्लाह ताला के साथ, तो इसको फिर इम्प्लिसिटली कहा जाएगा। और इम्प्लिसिटली वादा जो है ना, ये भी एक्सप्लिसिट वादे की तरह ही है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ है ना, और अल्लाह रब्बुल इज्जत तो दिलों का हाल जानते हैं, है ना। बंदे के साथ तो आप दिल ही दिल में वादा नहीं कर सकते, है ना, या हलफ जो है वो आप किसी कोर्ट में जाएं और जज साहब से कहें मैंने जी दिल में हलफ उठा लिया है, अब आप बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, मैंने अपना काम कर लिया, मैंने हलफ उठा लिया। ठीक है, ये बंदों के साथ तो ऐसा नहीं होता हलफ उठाने वाला, और ना जो है वो निकाह के अंदर, हाँ दिल ही दिल में मैंने जो है ना वो कबूल कबूल कर लिया इन साहिबा को अपनी बेगम, तो दिल के कबूलियत से तो फिर निकाह नहीं होता ना शरीयत में, तो फिर इंसानों के साथ तो फिर आपको यानी जुबान से उसका इजहार करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ तो जुबान से इजहार की जो है ना वो जरूरत नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सब जानते हैं कि इसके दिल की सोच क्या है, ठीक है ना, इसकी फिक्र क्या है, इसके इरादे क्या हैं, है ये जो इसने कलमा तो पढ़ लिया है लेकिन दिल में क्या चल रहा है इसके, और अल्लाह रब्बुल इज्जत तो दिलों को ही देखते हैं। ठीक है, नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे चेहरों को और तुम्हारे जो है ना वो जाहिर को नहीं देखते, हदीस मुबारक का क्या अल्फाज एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे इस वक्त, वो यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालकुम, इन अल्लाह ला यंजुरु सुवरकुम व वुजूहकुम व सुवरकुम, इस तरह के अल्फाज हैं, बल्कि वो तुम्हारे दिलों को देखता है। ठीक है, क्योंकि वो देख सकता है दिलों को, कोई और दिल को देख सकता नहीं है। ठीक है, तो अब जो है वो हम भी अपने दिल को टटोल लें कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, क्या इरादा है, क्या सोच है, क्या फिक्र है, क्योंकि अल्लाह ही ने हमारा हिसाब भी करना है, अल्लाह ही ने हमारे साथ मामला भी करना है, और हम अल्लाह से अपने दिल की कैफियत और सोचों को नहीं छुपा सकते। ठीक है, या अगर समझते हैं कि छुपा सकते हैं तो फिर अल्लाह ही अल्लाह हमारा, फिर अल्लाह ही खैर, अल्लाह क्या कहते हैं उसको, अल्लाह ही अल्लाह खैर सल्लाह। ठीक है, अगर हम समझ रहे हैं कि हम छुपा सकते हैं तो फिर अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर, हमें हिदायत और तौफीक और समझ अता फरमा दे कि ऐसा नहीं कर सकते हैं असल में। ठीक है, तो अल्लाह ताला के साथ एक्सप्लिसिटली इन वर्ड्स जो है ना वो मुआहदा वायदा हमने कभी नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला दिल का हाल जानते हैं, वही मुआहदा होता है अल्लाह ताला के साथ। आगे फरमाते हैं कि हुकूमतों के बैनुल आलमी मुआहदात, यानी जिसको बैनुल अक्वामी जज़ाकुमुल्लाह, हदीस भी लिख दी, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। ठीक है, यानी तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी सूरतों को अल्लाह ताला नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिलों को, तुम्हारे अमाल को देखता है। ठीक है, दिलों को भी देखता है यानी नियतों को, और अमाल को देखता है यानी जो अब तुम अमल कर रहे हो ना, अच्छी नियत तो तुमने कर ली, लेकिन अब जो तुम अमल कर रहे हो ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक है, या यहाँ पे तुमने अपनी चलानी शुरू कर दी है। नियत तो तुमने कर ली, हाँ भाई मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, लेकिन तरीके में जो है तुम अपनी चला रहे हो वो भी देखता है अल्लाह ताला कि नहीं, अगर तरीका तुमने अपना चलाया है ना वो भी मैं कबूल नहीं करूँ। ठीक है, हम तौबा के कलमात में कबिल तो जमिया अहकाम ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो तो फिर बैत होती है ना। ठीक है, और तौबा के कलमात होते हैं उसके अंदर कबिल तो जमिया अहकाम ही पढ़ते हैं ना, बाकी मुसलमान तो नहीं पढ़ते तौबा के कलमात, तो खाली जो मशाइख के साथ जिनका ताल्लुक होता है फिर वो पढ़ लेते हैं, वो भी उनके कहने के वो पढ़ लेते हैं, अगर नियत के साथ पढ़ें तो वाकई फायदा होगा, लेकिन बाकी मुसलमान तो नहीं पढ़ रहे होते उसके लिए, वाकई मुसलमान तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, खलास दाखिल हो गए भाई ईमान के अंदर, अब जो है वो सारे के सारे वादे निभाने पड़ेंगे। ठीक है, वही मुराद थी कि भाई कबिल तो हम नहीं पढ़ रहे होते ना आम मुसलमान। हुकूमतों के बैनुल अक्वामी मुआहदात या बाहमी समझौते, जमातों के बाहमी अहद व मीसाक, और दो इंसानों के दरमियान हर तरह के मामलात, निकाह, तिजारत, शिरकत, इजारा, हिबा वगैरह, सुबहान अल्लाह हिबा, तो आज जो है वो खवातीन में किताबुल हिबा शुरू हुई है। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे मर्द हैं जो कि माशाल्लाह कवाम बनाए गए हैं खवातीन के ऊपर, तो हर मर्द को ये रटी हुई होगी ये वाली आयत, ठीक है। तो अलरिजालु कवामून अला निसा, तो इंशाल्लाह ये आजिज़ जो है वो एक छोटा सा पैराग्राफ जो हमारी मौलिमा साहिबा ने लिखा था किताबुल हिबा के मुताबिक वो मर्दों में भी भेजेगा, इरादा किया हुआ था सुबह से अभी तक मौका नहीं मिला था। तो वो जो पैराग्राफ है ना बहुत अहम है किताबुल हिबा से मुताबिक। हिबा क्या होता है? हदिया करना, गिफ्ट कर देना किसी को, उसको उसके लिए शरीयत में हिबा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। हिबा के मसाइल को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हिबा इज वन ऑफ द वेज के जिससे के मिल्कियत साबित होती है, ठीक है। कोई चीज आपकी मिल्कियत में आ जाती है, सही है। तो खवातीन में अल्हम्दुलिल्लाह आज किताबुल हिबा के ऊपर दुरूस शुरू हुए हैं, तो अगर आपकी खातून साहिबा जो हैं वो उन दुरूस को नहीं सुन रही हैं तो उनकी तरफ तवज्जो इस तरफ करवाइएगा कि वो भी इन दुरूस को अटेंड करें, ठीक है। वजह खास तौर पे खवातीन के लिए ये भी है कि मर्दों की जो मिल्कियत होती है ना वो ज्यादातर कमाई की वजह से होती है, क्योंकि उनकी अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी लगाई है कि बाहर निकलो जो भी है वर्क फ्रॉम होम करो या बाहर निकल के जा करके कमा के लेकर के आओ। तो वो मेहनत मशक्कत करते हैं, ब्रेन से मेहनत करते हैं या हाथ पैर से मेहनत करते हैं, उसके बदले में उनको सैलरी मिलती है, तो वो उनकी कमाई होती है, कमाई से फिर वो चीजें खरीदते हैं, तो इस तरह से उनकी मिल्कियत बनती है चीजों की। लेकिन खवातीन जो अल्लाह ताला ने खवातीन का किरदार बनाया है, रोल बनाया है, वो क्या है कि उन्होंने कमाई नहीं करनी है जा करके, ठीक है ना। उन्होंने घर की जो है वो निगहदाश्त करनी है, घर को संभालना है और आने वाली नस्लों को संभालना है और अच्छा इंसान अच्छा मुसलमान बनाना है। ये औरत का काम अल्लाह की तरफ से लगाया हुआ और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, दायरे दूसरे किरदार लगाए गए जिनको कि हम आजकल फॉलो कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ से तो नहीं लगाए गए थे वाले किरदार, कमाने वाले किरदार, ठीक है। तो औरत जो है ना वो फिर कैसे उसकी मिल्कियत बनती है, मर्दों की मिल्कियत फिर उसके पास कैसे आती है? हिबा के जरिए से आती है। बाप जो है वो उसको हदिया करता है तो उसकी मिल्कियत में वो चीज आ जाती है, चाहे सोना हो, चांदी हो, रकम हो, राइट, या दूसरी चीजें हो। तो बाप की हिबा करने की वजह से औरत की मिल्कियत में चीजें आती हैं। फिर उसके बाद जो है वो भाई भी हिबा कर सकता है, बेटा भी हिबा कर सकता है, दूसरे रिश्तेदार भी जो है वो हिबा कर सकते हैं, किसी ने कपड़ा हिबा कर दिया, किसी ने कोई और चीज हिबा कर दी, तो इस तरह से औरत की मिल्कियत बनती है, ठीक है। या फिर शौहर, ठीक है, तो जब शादी होती है तो शौहर कुछ हिबा करता है, कुछ सास साहिबा हिबा करती हैं, कुछ ससुर साहिबा साहिब जो है वो हिबा करते हैं, इस तरह से औरत की मिल्कियत बनती है, ठीक है। तो अब उसको अगर हिबा का कुछ पता ही नहीं है कि भाई हिबा क्या चीज होती है, इससे मेरी मिल्कियत बन गई है, अब इस जो चीज मेरी मिल्कियत में है तो अब ये चीज जो है ना इसके ऊपर अगर ये माले जकात में से आता है, जैसे सोना चांदी नकदी और जरूरत से जायद कोई सामान है, तो इनके ऊपर जकात देनी है, ठीक है। तो वो जकात कैसे कैलकुलेट करेगी? जब उसको पता होगा कि मेरी मिल्कियत किन किन चीजों पर साबित होती है तभी वो जकात कैलकुलेट कर सकेगी ना, ठीक है ना। या ये कि उसके शौहर साहब उसके लिए जकात कैलकुलेट कर रहे हैं तो शौहर साहब को भी फिर बेगम से पूछना होगा ना, बेगम साहब जरा सोने का वजन वजन करके तो हमें बताएं, ठीक है, मैं तो नहीं बैठ के आपके सोने का वजन करूंगा अनलेस के उस कदम के शौहर हो, वरना तो शौहर ने तो बेगम से ही पूछना है कि सोने का वजन करके बताएं, तब मैं आपकी जकात जो है वो कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा, आप अदा कर दिएगा या मैं आपकी तरफ से अदा कर दूंगा बतौर इस्तेहसान के, ठीक है। तो सोना कितनी उसकी मिल्कियत में से है, कितना जो है वो शौहर की मिल्कियत का है जो कि वो आरियतन लेकर के पहन रही होती है, कैसे पता चलेगा? जब उसको हिबा के मसाइल पता होगा, ठीक है। तो हिबा के मसाइल जकात के लिए जरूरी है जानना, हिबा के मसाइल जो है वो मीरास के लिए जरूरी है, क्योंकि कोई भी हम में से किसी वक्त भी अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह इस दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल हो सकता है, तो पीछे जो छोड़ करके जाएंगे तो उनमें से जो हमारी मिल्कियत होंगी चीजें उनमें ही हमारी मीरास जारी होगी ना, दूसरे की मिल्कियत में तो हमारी मीरास जारी नहीं हो सकती, तो क्या है भाई हमारी मिल्कियत के अंदर, ठीक है। तो ये इसके मसाइल पता होंगे तो पता चलेगा ना कि हमारी मिल्कियत ठीक है जिसके अंदर जो है वो हमारी मीरास के हमारी विरासत जारी होगी, हमारी वसीयत जारी होगी। और तीसरा अहम तरीन मौका कब होता है मिल्कियत की, जब इम्पोर्टेंस बहुत यानी जरूरत पड़ती है उसकी, वो जब खुदा न खास्ता कोई अलहदगी वाला मामला हो जाता है, तलाक वाला मामला हो जाता है, ठीक है। तो उस वक्त जो है ना, वो किसने कौन सा वाला माल लेकर के जाना है, कौन सी चीज जो है वो बेगम के साथ चली जानी है, कौन सी चीज जो है वो बेगम के साथ नहीं जानी है, अब उसके ऊपर लड़ते रहते हैं भाई, कोर्ट के अंदर जाके मुकदमे करते हैं और लंबी चौड़ी लड़ाइयां होती हैं और पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। तो भाई मिल्कियत साबित होगी तो फिर ये सब मसला नहीं होगा कि भाई क्या इसका है क्या मेरा है, ठीक है। तो बहरहाल किताबुल हिबा, यहाँ पे चूंकि लफ्ज हिबा का आ गया था तो वो चंद चीजें आपके सामने रख दी हैं। तो चाहिए कि इस इन मसाइल को मर्द तो खैर सीखें लेकिन खवातीन को भी जो है ना वो मुतवज्जे करें, खवातीन में क्लास हो रही है, वो क्लास खाली खवातीन के लिए है क्योंकि मौलिमा साहब ही उसको बता रही है। तो एनीवे, तो दो इंसानों के दरमियान हर तरह के मामलात, निकाह, तिजारत, शिरकत, इजारा यानी वो जो इजारा के ऊपर, किराए के ऊपर जो चीजें देते हैं या लेते हैं तो वो इजारा हो गया, शिरकत यानी पार्टनरशिप वगैरह के अंदर क्या उसूल चलते हैं, हिबा वगैरह, और इन तमाम मुआहदात में जो जायज शर्तें बाहम तय हो जाएं, इस आयत की रूह से उनकी पाबंदी हर फरीक पर लाजिम व वाजिब है। और जायज की कैद इसलिए लगाई कि खिलाफ शरा शर्त लगाना या इसका कबूल करना किसी के लिए जायज नहीं है, ठीक है। खिलाफ शरा में सबसे प्रोमिनेंट जो बात आती है वो सूदी शराइत, ठीक है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपने बैंक के साथ साइन कर लिया या आपने किसी और पार्टी के साथ कर लिया कि जिसके अंदर जो है ना वो सूद देना है या सूद लेना है, तो ये नाजायज शर्त है। तो इस नाजायज शर्त का ना तो रखना जायज है और ना इसको कबूल करना जायज है। तो मुआहदे को पूरा करना ये तो फर्ज है, लेकिन मुआहदे के अंदर शराइत जो है ना वो सिर्फ वही पूरी की जाएंगी जो कि जायज हैं, नाजायज शराइत के साथ मुआहदा करना ही जायज है, ठीक है। इसके बाद आयत के दूसरे जुमले में इस आम जाब्ते की खास जुजियात का जिक्र फरमाया है। आम जाब्ता यानी एक जनरल प्रिंसिपल हो गया, अब उसकी जुजियात यानी उसकी निटिग्रिटीज जो होती हैं, उसके जुज, ठीक है, पोर्शंस वगैरह, उनका जिक्र फरमाया गया है, यानी इसी आयत के अंदर, इसी आयत का जो दूसरा हिस्सा है, इरशाद है, उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम। तो लफ्ज बहीमा उन जानवरों के लिए बोला जाता है कि जिनको आदतन गैर दविल उकूल समझा जाता है। आदतन का मतलब कि दुनिया का उसूल यही है कि उनको गैर दविल उकूल यानी ये अकल वाले नहीं है, अकल वालों के अलावा गैर दविल उकूल, क्योंकि लोग उनकी बोली को आदतन नहीं समझते तो उनकी मुराद मुबहम रहती है। बड़ी ही जबरदस्त किस्म की बात इस पैराग्राफ में हजरत ने लिखी है, ठीक है, कि उनको गैर दबे लुकूल क्यों समझा जाता है, क्योंकि लोग उनकी बोली को आदतन नहीं समझते तो उनकी मुराद मुबहम रहती है। आदतन का मतलब क्या कि इन जनरल इंसानियत जो है ना वो जानवरों की बोली नहीं समझ सकती, लेकिन नबी भी तो इंसान होते हैं, ठीक है ना, तो नबी तो जानवरों की बोली सारे नबी समझते थे, ठीक है, और कुछ औलिया को अल्लाह ताला कभी मौजजात करामाती तौर पर किसी जानवर की बोली समझा दें, या एज एन एक्सेप्शन किसी के साथ जो है वो कोई ऐसा मामला हो जाए अल्लाह की कुदरत के किसी को जानवर की बोली सिखा दें, तो वो एक्सेप्शन कहलाएंगी, आदतन नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो आदतन क्या है कि इंसान नहीं समझ सकते उनकी बोली, ये वजह है कि उनको बहीमा कहा जाता है, क्योंकि ये लफ्ज मुबहम से निकला, अनक्लियर, ठीक है। इमाम शेरानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि बहीमा को बहीमा इसलिए नहीं कहते कि उसको अकल नहीं है और अकल की बातें उस पर मुबहम रहती, या क्या क्या बात फरमाई, कि ऐसा नहीं है कि उसके पास अकल नहीं है और उसको समझ नहीं आती बातें, हमारी बातें नहीं समझ में आती हैं, दूसरे मामला समझ में नहीं आते, नहीं, ये वजह नहीं है कि उनको बहीमा कहा जाता है जैसा कि आम लोगों का आम ख्याल है, मगर बल्कि हकीकत यह है कि अकल व इदराक से कोई जानवर बल्कि कोई शजर व हजर भी खाली नहीं है। जानवर भी अकल वाले हैं, जो नबातात हैं, शजर, पौधे, बूटियां, ये भी अकल वाली हैं और हजर भी अकल वाले हैं, यानी पत्थर, जमादात जिनको कहा जाता है, इनमें भी अकल होती है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स जो साइंस में पढ़ाते हैं, तो भाई नॉन लिविंग थिंग्स वो सब लिविंग होती हैं, और लिविंग कैसी होती हैं कि सिर्फ ये नहीं कि वो मूवमेंट कर सकती हैं, बल्कि उनके अंदर इंटेलेक्ट भी होता है, उनके अंदर अकल और समझ भी होती है। ये है दीन की तालीम। और जो साइंस की तालीम है वो तो फिर उसमें तो फिर जो करने वाले हैं उनके अपने अंदर अकल नहीं होती, वो दूसरे की अकल को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है, अल्लाह उसके रसूल को नहीं मानते तो फिर क्या मानेंगे? कुछ समझ में नहीं आया। जब भी कल वो एक नौजवान जो है वो सवाल कर रहे थे, या उनके बिहाफ पे उनके अपा सवाल कर रहे थे कि वाई इज देयर सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड, है ना, वही जो पुराना घिसा पिटा सवाल, जब जलजला आता है तो सबसे पहले यही सवाल होता है, वाई देयर सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड, जलजला क्यों आ गया? क्योंकि देखते हैं ना कि फिर उसके अंदर बच्चे भी मरते हैं, और फलाना भी दबा हुआ होता है, और फलानी भी दबा हुआ दबी हुई होती है, तो उसने तो किसी पे जुल्म नहीं किया होता, तो फिर वो जो है वो क्यों दबे हुए होते हैं जलजले के अंदर, और क्यों ऐसा हो जाता है? तो बड़ा टिपिकल सा ही बहुत पुराना सा सवाल है, तो यही जवाब दिया। असल में बात ये है कि ये जो काफिर होता है ना, काफिर, ठीक है, जो रसूल का इनकार करता है, तो वो तो फिर पूरी पिक्चर को देखना ही नहीं चाहता ना असल में, वो तो पूरी पिक्चर को देखना ही नहीं चाहता, वो तो सिर्फ पिक्चर के एक बहुत ही छोटे से पार्ट को देखना चाहता है, जो उसको अपनी आंखों से नजर आ रहा है और अपने कानों से सुनाई दे रहा है, यानी दुनिया की जो खबरें उसको नजर आ रही होती हैं, दुनिया के मामला जो नजर आ रहे होते हैं, वो उसी को देखना चाहता है, ठीक है ना। बिगर पिक्चर क्या है कि यहाँ आने से पहले किधर थे, यहाँ पर क्यों आए हैं, और यहाँ से किधर जाना है, और वहां पे क्या होने वाला है, ये है बिगर पिक्चर, ये है एक्चुअल पिक्चर। उसको वो देखने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने रसूलों को ना मानने की कसम खाई भी होती है, ठीक है ना। तो अब जो शख्स जो है वो पिक्चर का इंतहाई छोटा सा पार्ट देखे, तो उसको क्या समझ में आएगी हकीकत, उसको क्या जो है वो जुहात समझ में आएंगी कि फलाना काम क्यों होता है, फलाना काम क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यही हकीकत जो है वो काफिर की है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। उसकी वजह यह है कि आप बिग पिक्चर को देखना नहीं चाह रहे, ठीक है। तो जो बिग पिक्चर को ना देखना चाहे तो फिर उसको आप क्या कहेंगे, अकलमंद? अकलमंद कहेंगे उसको, या उसको क्या कहेंगे, बेअकल, गैर ज़बेल उकूल, उसको ही कहेंगे ना, ठीक है। अल्लाह ताला ने तो दी थी अकल, लेकिन इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। तो वरना तो अकल सब में है, ठीक है। काफिर वो इस्तेमाल नहीं करता, है उसके अंदर भी, लेकिन शजर और हैवानात और नबातात और जमादात उनमें है भी, और वो इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि उनमें से कोई काफिर नहीं है, ठीक है ना। एक इंसान ही है जिसके पास होती तो है, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ठीक है। अच्छा, तो फरमाते हैं कि जी कोई भी खाली नहीं है। हाँ, दरजात का फर्क जरूर है कि उन चीजों में इतनी अकल नहीं है जितनी इंसान में, इसीलिए इंसान को अहकाम का मुकल्लफ बनाया गया है, ठीक है, कि इतनी अकल नहीं। इतनी अकल नहीं का मतलब जो है ना, वो भी ये नहीं कि इसका मतलब यही नहीं है कि इंसान जो है वो सारे सही फैसले करता है, उसके अंदर सबसे ज्यादा अच्छी अकल है, ये मतलब नहीं है इसका, ठीक है। बल्कि अकल के यहाँ पर जो आला तरीन दर्जे की बात हो रही है कि इंसान में इतनी सबसे ज्यादा अकल होती है, तो उससे मुराद ये है कि इंसान में जो अल्लाह ताला ने रूह रखी है, उस रूह की जो है ना वो ताकत सबसे ज्यादा है, दूसरों के रूह के मुकाबले में ताकत सबसे ज्यादा है। इसी को हमने रमजान मुबारक की किसी क्लास के अंदर वोल्टेज वगैरह से भी समझाया था, याद है किसी को, वोल्टेज कि भाई हमारे यहाँ जो है ना वो वोल्टेज हाई हो जाती है, तो वही बल्ब जो होता है ना, पुराने जमाने में बचपन में 40 वॉट्स का बल्ब होता था, 60 वॉट का होता था, और 100 वॉट का होता था, ये तीन किस्म के वोल्टेज जो है ना वो घर में लगी हुई होती थी, और एक 0 वॉट का भी होता था। तो कराची में वोल्टेज ज्यादा हो जाती थी ना, वही 40 वॉट का जो बल्ब होता था वो 100 वॉट का जो है वो पावर देना शुरू हो जाता था, और कभी वोल्टेज ड्रॉप हो जाती थी तो 100 वॉट का जो बल्ब होता था ना वो जो है वो 40 के बराबर हो जाता था। तो बल्ब तो वही है, लेकिन जो इंटेंसिटी पीछे से जो करंट आ रहा है ना, जो जो ताकत आ रही है, उसकी मिकदार किसी के अंदर ज्यादा है, उसकी मिकदार किसी के अंदर कम, ठीक है। तो जितनी ज्यादा रूह होगी उतनी ज्यादा जो है वो रूह के अज्जा के अंदर ताकत होगी। अकल क्या है, ये रूह का एक जुज है, अकल क्या है? ये कोई जिस्मानी चीज नहीं है, ये दिमाग और ब्रेन नहीं है। हाँ, अकल फिट होती है जाकर के ब्रेन में। सबसे ज्यादा अकल जो है वो ब्रेन में जाकर के फिट होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किडनी जो है ना वो अकल के बगैर है, या आपकी जो है वो हार्ट जो है वो अकल के बगैर है। अकल तो अब इन लोगों को समझ में आ रही है आहिस्ता आहिस्ता ना। ये कहते हैं जी इवन हार्ट हैज अ ब्रेन। अब तो क्या, करते करते जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और बहुत करते 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 रहते हैं हर वक्त, ये तो अब इनको ये बात समझ में आ रही है कि यार जो दिल होता है ना उसका भी एक ब्रेन होता है। फिर और तहकीक करी और पता चला कि अच्छा यार ऐसा लगता है कि किडनीज का भी एक ब्रेन होता है। ठीक है, क्योंकि किडनीज जो होती है ना वो भी डिसीशंस ले रही होती है। ठीक है, और वो डिसीशन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रेन ले रही होती है। ब्रेन जो है ना वो तो जो सिग्नल्स दे रहा होता है, तो वो भाई ये देखना है, ये सुनना है, इधर हाथ हिलाना है, इधर जो है वो टांग हिलानी है, ये करना है। वो किडनीज को थोड़ी वो कह रहा होता है कि अब तुमने जो है वो प्रोसेस करना है, वाटर रिटेंशन को जो है वो तुमने कंट्रोल करना है, ये करना है। वो तो एक तरह से इंडिपेंडेंटली जो है वो फंक्शन कर रहे होते हैं। तो वो कैसे इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहे होते हैं या डिसीशन ले रहे होते हैं? सबके अंदर अकल मौजूद है। ठीक है, यानी इवन विद इन ह्यूमन बीइंग्स, हमारे अपने वजूद के अंदर भी जो है ना, हमारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के अंदर भी अकल मौजूद है। लेकिन सबसे एडवांस अकल जो कि जिसका ताल्लुक जो है वो शरीयत के इल्म, जो हम किताब पढ़ते हैं, आंखों से जो है वो देखते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, ये सारी चीजें किधर हो रही होती हैं? ब्रेन में हो रही होती है। ठीक है, क्योंकि अकल का सबसे ज्यादा गहरा और सबसे कंप्लीट ताल्लुक हमारे ब्रेन के साथ अल्लाह ताला ने रखा है। ठीक है, तो अकल ये ब्रेन नहीं है, अकल इज नॉट इक्वल टू ब्रेन, लेकिन अकल क्या है? रूह का हिस्सा है। ठीक है, तो अब ये जो रूह है ये सबसे ज्यादा जो है वो अशरफुल मखलूकात, जब भी तो उसको अशरफुल मखलूकात कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो जिन, ये जिनों के अंदर इंसानों से कम दर्जे की रूह होती है, और उनकी अकल जो है वो उसके हिसाब से ही इंसानों के मुकाबले में कम होती है। और उसी के तरीके से जो है वो आईज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। हाँ, तो वो तो बिल्कुल ऊपर ही लगी हुई है ना, हम तो नीचे किडनीज की बात कर रहे थे। बहरहाल, तो सभी एक्सटेंशन है ना ये। बहरहाल, अब भाई इनको क्या पता है यार क्या किसकी एक्सटेंशन है, क्या किसकी एक्सटेंशन नहीं। एनीवे, तो हम तो ये समझा रहे हैं कि रूह है ये सारा का सारा मामला। तो अब नीचे जो है ऊपर इंसानों के बाद जिन आते हैं, जिनों के बाद जो है वो हैवान आते हैं, हैवानों के बाद जो है फिर नबातात, हैवानात के बाद नबातात आते हैं, नबातात के बाद जो है वो जमादात आते हैं, और ये पूरी की पूरी अल्लाह ताला की मखलूक है। फरिश्ते, उनके अंदर भी अकल है, फरिश्तों में भी अकल है। ठीक है, लेकिन फरिश्तों का मामला जो है ना वो इंसान और फरिश्ते, ये फिर उनके दरमियान है कि भाई कौन सा वाला इंसान फरिश्तों से अफजल है, और कौन सा वाले फरिश्ते इंसानों से अफजल हैं, और कौन सा वाले जो है वो इनसे नीचे हैं, वो इनका आपस में एक चलता रहता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है बाकी डिटेल्स के ऊपर कि फरिश्ता अफजल है कि इंसान अफजल है, डिपेंड करता है कौन सा फरिश्ता है और कौन सा इंसान है इस पर। क्या लिखा उन्होंने, हजरत, डज इट मीन दैट द स्ट्रॉन्गर द रूह ऑफ अ पर्सन बिकम्स हिज अकल एंड डिसीजन मेकिंग बिकम्स बेटर, दे बिकम अहले लुब। एग्जैक्टली, ठीक है, तो जितना इंसान की अपनी रूह जो होती है ना, जो कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखी है, तो अब वो जितना सेहतमंद होगी वो रूह, उतना ज्यादा उसकी अकल जो है वो ज्यादा अच्छे से काम कर रही होगी। ठीक है, और इसी को जो है ना वो फिर उलुल अलबाब फरमाया। ठीक है, लुब वाले लोग फरमाया। ठीक है, वो कौन वो लोग होते हैं? जिस्मानी तौर पे स्ट्रांग जरूरी कोई नहीं है जिस्मानी तौर पर स्ट्रांग हो, लेकिन रूहानी तौर पर स्ट्रांग हो। और रूहानी तौर पर स्ट्रांग होने की क्या क्राइटेरिया है? कि अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करते हो, और रूह को जो है ना वो वाफिर मकदार में गजा पहुंचाते हो, रूहानी गजा, इससे पर रूह स्ट्रांग हो जाती है, और उसी को फिर अहले लुब कहा जाता है। बहरहाल, ये पैराग्राफ बस करके आज की क्लास खत्म करते हैं कि दर्जात का फर्क जरूर है इन चीजों में, उन चीजों में इतनी अकल नहीं है, यानी इतनी स्ट्रांग रूह नहीं है जितनी इंसान में, इसीलिए इंसान को अहकाम का मुकल्लफ बनाया गया, रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, जानवरों को अहकाम का मुकल्लफ नहीं बनाया गया, यानी शरीयत के अहकाम का, 5 वक्त की नमाजें और साल में एक दफा के 1 महीने के रोजे और जक़ात जो है वो 2.5% देना, इनका जो है वो जानवरों को मुकल्लफ नहीं बनाया गया। पर्दे का भी जो है वो जानवरों को मुकल्लफ नहीं बनाया गया, फीमेल गाय ने जो है वो पर्दा करना है, अगर चेके हया वगैरह तो उनमें भी कुछ कुछ रखी है, लेकिन पर्दे का मुकल्लफ नहीं बनाया गया। वरना अपनी जरूरियात जिंदगी की हद तक हर जानवर बल्कि हर शजर व हजर को हक ताला ने अकल व इदराक बख्शा है। यही तो वजह है कि हर चीज अल्लाह ताला की तस्बीह करती है। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, नहीं है कोई भी चीज सिवाय इसके के जो कि अपने रब की तस्बीह भी करती है उसकी तहमीद के साथ, दोनों काम करती है, तस्बीह भी करती है तहमीद भी करती है। अकल ना होती तो अपने खालिक और मालिक को किस तरह से पहचानती और किस तरह से तस्बीह करती। ठीक है, ये तो डिपेंडेंट है अकल के ऊपर, हर चीज में अल्लाह ताला ने अकल रखी। ठीक है, ओहद पहाड़, क्या है ओहद पहाड़? पत्थरों का मजमुआ, बड़ा सा एक पत्थर और उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर भी उसके साथ होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद को जो है वो मुखातब होकर गए, ए ओहद राइट, क्यों हिल रहा है, तुम्हारे ऊपर ये खड़े हुए हैं, और जमीन को भी मुखातब होकर उमर अतान फरमा रहे हैं। और जो है वो दरियाए नील, दरियाए नील जो है वो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स का मजमुआ सारा का सारा, यही है ना। तो वो दरिया नील को खत लिख करके कह रहे हैं, खत जो है वो दरिया नील के अंदर डाल देना, ठीक है ना, जो कि सूखा पड़ा हुआ था असल में, उस वक्त तो दरिया बह भी नहीं रहा था जब खत डाला गया था उसके अंदर, ठीक है। लेकिन उस लोकेशन पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स के शायद वहां पे वेपर्स होंगे या जो भी वहां पे जो है ना वो होंगे, उनको उमर रतान मुखातब फरमा रहे हैं कि अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलता है तो चल, अल्लाह के हुक्म के अलावा चलता है तो ना चल, हमें तुम्हें हमें तेरी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर अपनी मर्जी से चलता है तो वी डोंट नीड यू, वी डोंट नीड यू। ठीक है, तो दरियाए नील के वो वाटर ड्रॉप्स जो थे या वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे या वेपर्स थे, उनके अंदर भी अकल थी। और नबी अलैहिस्सलाम नहीं, उनके खलीफा जो हैं वो उनको मुखातब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है भाई असल में तो दीन। ठीक है, अब अल्लाह ताला हमें इसको मानने की तौफीक अता फरमा दें तो फिर हमारा काम चलना शुरू हो जाएगा। जब तक हम इसको नहीं मानेंगे ना, तो उस वक्त तक यही होगा कि दीन से तो काम नहीं चलता। आप दीन पे कब चले हैं तो दीन से आपका काम चले। ठीक है, अल्लाह ताला बात की समझ हम उनकी तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।